نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يؤمنون بالغيب يعني إيمان بالغيب هي ہماری سیریز ہے بلیف ان انسین ان دیکھی دنیا پر یقین رکھنا اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں نہ صرف یہ ہے کہ پچھلے دور کی باتیں بتا دیں بلکہ اگلے دور کی باتیں بھی بتا دیں، تو لہٰذا ہمیں اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان کے دل میں یہ سوال رہا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میرا انجام کیا ہوگا۔ بچہ بھی پوچھتا ہے، ماما ہم کیسے آئے، ہم کہاں تھے، اچھا پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اور دنیا نے مختلف طرح سے ان چیزوں پہ غور و فکر کیا، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے میرے پاس سب سے اوتھینٹک اور سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مؤثر اور حقیقی ریسورس کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو آج انشاءاللہ ہم علامات قیامت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے حقیقت میں بہت بڑی فٹیک سے بچا لیا ہے۔ اب تصور میں لائیں، کوئی گاڑی چل رہی ہے، اس کو نہیں پتا اور آگے اینڈ پہ پل ٹوٹا ہوا ہے، بالکل اس کے قریب پہنچ کے پتہ چلا اور اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ سنبھل سکے۔ قیامت کتنی بڑی چیز ہے، انسان کا اس دنیا سے جانا اور اس کی نئی دنیا میں آنکھ کھولنا اس کی قیامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ممات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ آج کی ڈیٹ دیکھیے، December 14, 2024، بس 16-17 دن کے بعد ڈیٹ بدل جائے گی، 24-25 میں بدل جائے گا۔ مجھے آپ کو یقین، آج اگر رات بستر پہ سوئیں اور آنکھ قبر میں کھلے تو آپ کی میری قیامت شروع ہو گئی۔ آپ کو مجھے علامات قیامت سے کیا لینا اور کیا دینا؟ آپ کی میری علامات قیامت پتہ کیا ہے؟ ہماری بیماریاں، حادثے۔ ہم جن گاڑیوں میں بیٹھ کے آئے ہیں نا، ہم اپنی زندگی سے زیادہ موت کے قریب تھے اس میں۔ تو میں جس دن مر جاؤں گی نا، میری قیامت شروع ہو جائے گی۔ حدیث ہے، مم مات فقط قامت قیامت ہو۔ تو ایک تو وہ قیامت ہے جو انسان کی اپنی موت کے ساتھ شروع ہوتی ہے، دوسری وہ قیامت ہے جو پوری انسانیت کی قیامت ہوگی۔ یہاں ہم کچھ اس پہ بات کریں گے۔ اسے پیچھے ہم نے موت پہ بات کی، موت کی علامتوں پہ بات کی، حسن خاتمہ پہ بات کی، بری موت سے بچنے پہ بات کی، اور اسی طرح سے جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری موت ہمارے لیے اس دنیا سے آگے جانے والی چیز ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ قیامت کی حقیقت، قیامت کی علامتیں ہیں۔ اب دیکھیے قیامت کیا ہے، کھڑے ہونے کا وقت، قام یقیم قیامت، مقام، آپ کس قوم سے ہیں، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ اور لفظ قیامت کیا ہے، قائم ہونے والی، یوم القیام، کھڑے ہونے کا دن۔ ہمیں ایک دو گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس قیامت کے جو مراحل ہے وہ اس سے پچھلے لیکچر میں الحمدللہ گزر چکے ہیں۔ لیکن آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ کیا ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہیں، کیونکہ وہ وقت جب آ جائے گا پھر تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی میں اگر قیامت کے کوئی اسباب، کوئی ایسے معاملات ہمیں دکھے تو پھر ہم اس کے بارے میں جان لیں۔ ایک بہت پیاری پریپریشن ہے، تیاری ہے۔ تو علامات، علامت ان سے نشانی، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، اسی سے علم بھی ہے، علم بھی جھنڈا ہی ہوتا ہے۔ بندے کا علم اس کی بات سے دکھ جاتا ہے، اور جس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے اللہ اس کو خود ہی بلندی دے دیتا ہے، جیسے جھنڈا بلند ہوتا ہے۔ علامات قیامت کیا ہے کہ جس طرح عام طور پر ایک انسان کی موت سے پہلے موت کے کچھ آثار دکھتے ہیں، کبھی کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا۔ انسان کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، جس کو ہم نزا کہتے ہیں نا، اب سانس اکھڑ رہی ہے، اب ٹانگیں سیدھی ہو رہی ہیں، اب ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے۔ تو وہ ایک انسان کی نا انفرادی موت ہوتی ہے، इसी तरह जब इस दुनिया जिसको आप आलम में फानी कह सकते हैं, जब इसकी मौत यानी कियामत आएगी तो उससे पहले कुछ निशानियां होंगी। तो आप आज कियामत का नया नाम सीख लें, इस आलम फानी की मौत, इस फना हो जाने वाली दुनिया की मौत, इसको कियामत कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसकी निशानियां तस्करा किया है, कुरान में भी है और हदीस में भी है। तो जो अलामत कियामत है ना, वो दो तरह की हैं। एक जिनको आप कहते हैं अलामत सुगरा, छोटी, सगीर, सुगरा, असगर, ये सब लफ्ज उर्दू में भी हम बोलते हैं, छोटी निशानियां कहते हैं। और दूसरी को कहते हैं अलामत कुबरा, बड़ी निशानियां, बड़ी बड़ी निशानियां। अब छोटी अलामतें क्या हैं इसको अगर समझें, तो ये तो आ चुकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से, यानी आपकी नबूवत के मिलने से क़यामत की छोटी निशानियां शुरू हो चुकी। सोचिए ज़रा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना क़यामत की निशानी थी। आपने एक मौके पे फरमाया था कि उस वक़्त, आज से देखिए ना तकरीबन 1500 साल पहले, 1470 चल रहा है ना, यानी 1400 से ऊपर हो गए साल, उस दौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो आपने क्या कहा था कि कपड़ा कोई फाड़े, सारा कपड़ा फट गया, कन्नी का तार बाकी रह जाए, बिल्कुल इसी तरह दुनिया का वो हिस्सा जो पीछे गुजर चुका है वो पूरा कपड़ा फटना है, अब सिर्फ कन्नी का तार है। आप और मैं सिर्फ कन्नी के तार के दौर में आए हैं दुनिया में, और उससे भी अब 1500 साल आगे आ गए। इससे सोचिए दुनिया कितनी बूढ़ी है। लेकिन इस दुनिया की एक खासियत देखिए आपने, जितनी बूढ़ी होती जा रही है उतनी खूबसूरत होती जा रही है। पहले दुनिया इतनी फैंसी थी, इतना हल्ला गुल्ला था, सादी सी दुनिया थी, इंसान कच्चे घरों में रहते थे, जंगलों में, सहराओं में, पहाड़ों में, सर पे पानी के मटके उठाकर चलते थे। आज टच सिस्टम, फिर भी सब्र कोई नहीं, जरा 19 से 20 हो जाए बेसब्री कोई हमारी देखे तो देखे। तो दुनिया जितनी पुरानी हो रही है ना उतनी एडवांस हो रही है, और ये दुनिया जो इस वक्त गुजर रही है ये कियामत के कुर्ब का दौर है। जो छोटी निशानी है उसमें सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने तफहीमु सुन्ना सीरीज में एक पूरी बुक पढ़ी है, अलामत कियामत का बयान, लंदन से हुई थी वो बुक कुछ साल पहले। लेकिन आज हम सिर्फ एक हल्का फुल्का सा इहाता करेंगे कि क्या है, तो ज़रा उंगलियों पर गिनना शुरू कर दें। सबसे पहली जो मैंने आपको बता दी, नबी सल्लम का ज़हूर, दूसरी चांद का दो टुकड़े होना, और ये जो मैं बता रही ना इन सब की हदीसें मौजूद हैं, कोई कुरान की आयत से है कोई हदीस है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपको एक लिस्ट देना चाहती हूँ। आज आप जब यहाँ से उठ के जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी उंगलियों पे पता कितनी निशानियाँ होंगी, अभी बता दूँ जी, सुबहान अल्लाह, 96 सलामतें लिखिए। आज कुछ भी ना हो तो कम अज़ कम ये नाम लिख के ले जाइए। नंबर एक, नबी सल्लम का ज़हूर, फिर दूसरा चांद का दो टुकड़े होना, इसको हम क्या कहते हैं, शक्के कमर। कुरान कहाँ कहता है, सूरत कमर, इसे समान शक्कत भी कुरान में आता है। एक मोजज़ा था नबी सल्लम की ज़िंदगी में, कुछ लोगों ने ऐसे ही मजाक में कह दिया कि अच्छा अपना कोई मोजज़ा दिखाइए, तो आपने उंगली की तो चांद दो टुकड़ों में हुआ, थोड़ी देर बाद दोबारा अल्लाह ने मिला दिया, आधा चांद इधर था आधा इधर। आज 1400 साल बाद भी जब लोग चांद पे गए तो उसके बीच में एक कट है, जैसे कभी पिच टूट जाए, चाय की प्लेट टूट जाए, तो पहले दौर में लोग उसको जोड़ लेते थे, अब तो टूटे भी ना तो फेंक देते हैं। हाँ, आपने खुद भी ऐसी प्लेटों में खाया होगा जिसके किनारे भुर जाते थे और उसको लोग जोड़ते थे, तो आज भी चांद में एक कट लगा हुआ है। लेकिन क्या लोग मान गए थे, नहीं माना, जिसको नहीं मानना उसको नहीं मानना, ये दिल से शौक निकाल दें कि कोई आपकी किसी बात पे दे, इल्ला ये कि अल्लाह दिल बदल दे, तो बहरहाल वो नहीं माने। तीसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, आपका दुनिया से जाना, और उसके बाद चौथी, उम्मते मुस्लिमा का जहूर, अल्लाह ने बड़ा गलबा दिया। नबी सल्लम के दौर में अभी इस्लाम की तारीख बननी शुरू हुई थी, लेकिन आपके जाने के बाद अल्लाह ने सहाबा कराम से ये काम लिया। अपने लिए ये दुआ करें, मैं भी करती हूँ कि अल्लाह मेरे सामने जितना दीन का काम हो रहा है मेरे जाने के बाद इससे ज्यादा हो। और आपको एक छोटा सा गुर बताऊं, तारीख गवाह है, इखलास के साथ की भी नेकियां, नेक नियति के साथ की भी नेकियां, और इसी तरह से अच्छे अकीदे के साथ की भी नेकियां, उसमें हमेशा बाद में काम ज्यादा होता है। आप कहेंगे दलील दीजिए, तो मैं क्या दलील दूं आपको। कभी खाना कहाँ गए? सच बताएं, वो दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चे को एक गैर अजीज और इनमें छोड़ा उस दिन, और फिर वो दिन याद कीजिए कि जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के साथ मिलकर इस घर की दीवारें खड़ी की, वइज जरफ़ा इब्राहिम अल कवाइद मिन अल बैत, और क्या दुआ की थी, रब्बना वब असीहिम रसूल मिन हु। और जब पूरा घर बन गया तो अल्लाह ने कहा कि अब आवाज लगाइए। अल्लाह ताला, घर तो मैंने बना दिया, अब क्या करें। कहा आप खड़े होकर आवाज लगाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो क्या कहा अल्लाह को, अल्लाह ताला इस सहरा में मेरी आवाज कौन सुनेगा। तो क्या कहा था आपको, आवाज लगाना आपका काम है, पहुंचाना मेरा काम है। और रिवायात से मिलती है ये बात कि जिस जिस रूह ने उस आवाज के जवाब में लब्बई कह दिया वो जरूर बैतुल्लाह का हज उमरा करेगा। बस ये करें, आप यहाँ काम कर रहे हैं ना, ये क्लास है, ये मस्जिद है, सारी दुनिया में माशाल्लाह डिफरेंट जगह लोग मुसलमान दीन का काम करते हैं ना, मस्जिदें बनती हैं, इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, क्लासेस होती हैं, कोई भी बुक्स छुपती है, यानी ए टू जी वही काम बाकी रहेगा जो अल्लाह के लिए होगा। इमाम मालिक रहमहुल्ला ने मौता लिखी, किताब का नाम है, खूब मेहनत की थी उसको लिखने में, इसीलिए इसको मौता कहते हैं, रौंदी हुई, स्ट्रगल हार्ट, बड़ी मशहूर हुई। अल्लाह ने उसको शोहरत दी, जब शोहरत दी तो कुछ अरसा गुजरा तो इनके पास कोई आया, कहने लगा इमाम मालिक बाजार में आपकी किताब की नकलें बनने लग गई हैं, जिसको आज क्या कहते हैं, रेप्लिका, पेरोडी। अब तो और बड़ी मौतें हैं, तो उनका एक जुमला दिल पे लिख लें। कहने लगे फिक्र नहीं करो, माँ का ना लिल्ला बाकिया, जो काम भी अल्लाह के लिए होगा ना वो बाकी रहेगा। आज इस बात की गवाही ले लीजिए, सिर्फ एक ही मौत है मार्केट में, और वो मौत इमाम मालिक है। वो नेकी कीजिए जिसकी जरूरत है, वो नेकी कीजिए जो आपको करनी आती है, वो नेकी कीजिए जिसको करके आप भूल जाएं। पहले लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, नबी सल्लम के सहाबा और बाद में और भी नेक लोग अपने आप को नेक साबित नहीं करना चाहते थे, शोहरत से डरते थे, मुंह पे कपड़े बांध के जाते थे मैदाने जंग में कि अगर कोई बहादुरी का जौहर हमने दिखा दिया तो लोगों को ना पता चले कि हम कौन है, चूंकि इखलास था ना। बाद में यही बात उनकी वजह शोहरत बन गई। तो क्या पता चला, हमेशा याद रखिए, इखलास कभी छुपता नहीं है और निफाक भी नहीं छुपता, सच्ची मोहब्बत भी डुल डुल पड़ती है, चाहे मुंह से बोलना भी ना आता हो कि आई लव यू, आंखों से, इशारों से, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती, और झूठी मोहब्बतें और चापलूसियां भी नहीं छुपती। तो इस बात को जहन में रख लीजिए, अल्लाह के नबी के बाद उम्मत मुस्लिमा उभरी थी, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल खुदा व दीनिल हक्की लियुसरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून, वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह ने इस दीन को गालिब होने के लिए भेजा, इस्लाम दबने वाला दीन है ही नहीं। जैसे मक्खन का पेड़ा जिसको आप खूब लस्सी में बर्फ डाल के ठंडा कर चुके हो ना, कोई हाथ से उसको नीचे दबाएगा भी ना 10 सेकंड बाद ऊपर आ जाएगा। इस्लाम के मिजाज में गलबा है, जिसने इस्लाम को दबाने की कोशिश की वो दब गया, वो कट गया। जहां कोई फितना उठा इस्लाम उसके बाद ज्यादा आया। 9/11 2001 में हुआ था, देख लीजिए। उसके बाद रिकॉर्ड कुरान छपे, जेलों में गए, सबसे ज्यादा उस वक्त लोग इस्लाम की तरफ आए। और अब ये जो दूसरा रीसेंट कोरोना, कोरोना एक शर था, क्या था, इस्लाम को बड़ी खैर मिली उससे, उसके बाद इस्लाम फैला। तो बिल्कुल याद रखिए, आप और मैं अगर इस इस्लाम के गलबे में मददगार हैं तो हम कामयाब हैं। और मैं पढ़ाती रहूँ, आप पढ़ते रहें, आप मखारज ठीक करें, कोई ग्रामर की गलतियां निकाले, मुझे जी पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। पढ़ पढ़ के अनपढ़ हो गए, सुन सुन के सुन्न हो गए, किताबों की किताबें हैं उसकी, लेकिन जिंदगी का रंग नहीं बदला, मकसद नहीं बदला। तो गलबा इस्लाम में अल्लाह मेरा हिस्सा डाल दे, ये आज से अपनी दुआ में शामिल रखें। अपने बच्चों को दुआ दिया करें, बेटा अल्लाह तुमसे इस्लाम का काम करे। आप देखिए ना कि एक एक माँ है, बच्चा रो रहा है, इतने में बाहर में दरवाजे पे बेल बजती है, तो माँ जाती है तो कोई भीख मांग रही है, कोई औरत है कुछ दे दो। वो पहले बेचारी थकी हुई थी, क्या देगी, या मैं भी कुछ देगी या माजरत करेगी, चली जाएगी वो बेचारी। एक और मौका भी है, और एक माँ का रोता बच्चा, और बाहर एक औरत आती है, क्या बात है, कहती मैं आपके बच्चे को देखूं, वो थकी भी थी, कहती चलो इसको थोड़ी देर बहला दो। अब उसके बच्चे को टेक केयर करती है थोड़ा थोड़ा। थोड़ी देर के बाद वो कहती है ये तो बहुत अच्छा रख रही है इसको, देखो बच्चा भी चुप हो गया। माँ क्या सोचती है कि मैं इसको अपने बच्चे की हेल्प के लिए रख लूँ। अब जब वो औरत उस बच्चे को देखेगी तो माँ उसको वही 100 रुपया पकड़ाएगी, या आटा दे देगी, या गालियां देगी, उसे कहेगी तुम्हें जॉब चाहिए आ जाओ मेरे घर में आ जाओ। बस मिसाल है, एक औरत के बच्चे को कोई देखे तो उस औरत को कितना अच्छा लगता है। जरा सा मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा जब मैं बोलूंगी। जब अल्लाह के दीन को कोई देखे, जब कोई अल्लाह के दीन को टेक केयर करे। आज हमारा दीन फितनों में है, हम परेशान हैं, हमारे दीन की इज्जत नहीं है। आज हम मुसलमान पूरी दुनिया में उस दौर से गुजरे जिसको आप कह सकते हैं अपनी तारीख का बदतरीन दौर। अपने घरों में हमारी बड़ी इज्जत है, टौर है, बल्कि अपने घर में तो हम बड़े शेख और चौधरी हैं, नौकरों की फौज है, वो हमारे हर इशारे पे जो कहो ला देगी, दूसरों की नजरों में कैसे हैं। तो गलबा इस्लाम, गलबा दीन का तरीका क्या है ये लिख लें, इस दीन पे अमल करना। फतू मेनू नबी बात दिल किताबी व तकफुरु नबी बात, क्या तुम इस किताब के बाज हिस्से पे ईमान लाते हो, बाज को छोड़ देते हो। ये है फमा जजाउ मिन को मिल्ला हिस्सुन फिल हयात दुनिया फिल आखिर। तो अल्लाह ताला आपको मुझे इस गलबे में यूज कर ले। किसी को एक शायर ने कहा था ना कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, नस्लों से ये काम अल्लाह ले ले। आज से अपनी तहज्जुद की दुआ में ये दुआ मांगा करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। आगे चलते हैं, अगली अलामत, हर घर में इस्लाम दाखिल होगा। हदीस पूरी पता क्या है, जोर वाले के साथ जोर के साथ यानी लड़ाई होगी, और जो इज्जत के साथ लेना चाहेगा उसके साथ इज्जत से होगा। आपको किसी को याद है जब टीवी इजाद हुआ था, ये फैसलाबाद वो जगह है जहाँ सबसे पहला टीवी हमारे घर आया था, फारुखाबाद की गली थी, पूरी गली में टीवी था ही नहीं, पहला टीवी शायद हमारे ही घर आया होगा। और शाम के वक्त गली मोहल्ले के जो बच्चे थे ना वो इस तरह आकर इकट्ठे हो जाते थे ड्राइंग रूम में जैसे पता नहीं को मेला लगा हुआ है, और 1-1.5 घंटे की शायद नशरियात होती थी। पहला टीवी, जब टीवी आया था ना तो उस वक्त लोगों ने फतवे दे दिए थे उस दौर के दीनी रहनुमाओं ने, क्या इस घर में नमाज ही नहीं जायज, क्यों, क्योंकि इधर तस्वीरें आ गई हैं। आज उन्हीं तस्वीरों पे अजान होती है और उन्हीं में इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। हरम के कैमरों की कवरेज से तो पूरी दुनिया में हरम दिखाया जाता है ना, लेकिन वक्त के साथ ये हुआ, उस टीवी के चैनल ने आज उसको नेट कह लें, सोशल मीडिया कह लें, सेटेलाइट कह लें, क्या पूरी दुनिया को इस्लाम नहीं दिखा दिया। आपको पता है ना कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, लेकिन टीवी पे जब वो ये सब कुछ देखता है तो उसके दिल पे क्या आता है? एक मुस्लिम था तो नॉन मुस्लिम के साथ डिबेट कर रहा था इस्लाम पे, यानी दावा थी कुछ भी था। तो उसने कहा कि तुम ये बताओ, किसी जगह 10 लाख लोग हों और एक क्योस है, भीड़ है, और उन सब को सीधी लाइनों में खड़ा करना हो तो कितना टाइम लगेगा? उसने कहा इट्स क्वाइट हार्ड, 10 लाख लोगों को आप सीधा नहीं खड़ा कर सकते। उसने कहा फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ इट बी डन, हाउ लॉन्ग इट विल टेक? उसने कहा मेरा ख्याल है कि 8-10 घंटे लगेंगे। उसने कहा एक और भी बात है कि उन लोगों को एक दूसरे की जुबान नहीं समझ आती, दे आर मल्टी लैंग्वेज डिफरेंट है। उसने कहा फिर इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। अब जब उसका जहन बन गया ना, तो इसने टीवी खोला तो हरम का नक्शा दिखाया, लोग बिखरे, इतने में आवाज, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कद कामत सला, कद कामत सला। और उसने अपनी आंखों से देखा सिर्फ इकामत के दौरान पूरे हरम में लाइनें बन गई, मुसलमान हो गया। इस टीवी ने उसको इस्लाम का गलबा दिखाया, तो इस्लाम दाखिल हुआ। सन में बड़े होते थे और आज घर के अंदर सनमा आ चुका है। आप अपने बेड में एक छोटा सा फोन लेके जाएं, पूरी दुनिया की जो चीज मर्जी देखें, ये कयामत की निशानी है। ये जो पूरी दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज दिखती है ना, ये कयामत की निशानी है। सुबह कहीं, रात कहीं, दिन कहाँ, रात कहाँ। और आप याद आगे सुनेंगे आप इंशाल्लाह कि जब दज्जाल ने आना है, तो आप शुरू से सुनते हैं ना कि वो 40 दिन में पूरी दुनिया का सफर करेगा। वो कैसे करेगा? ये सारी कह लीजिए कि तरक्की होगी तो करेगा ना। लोग अगले दौर में लेजर के साथ चलेंगे। आप यहाँ से एक ऑर्डर करते हैं, फलां जगह भेजना है, DHL है, 8-10 दिन के बाद भी पता चलता है पैकेज गुम गया, पलक झपकने में। जैसे कभी किसी दौर में टेलीग्राम, उधर खत लिखते थे तो इधर पेपर निकाल लेते थे ना, अब ये फ्यूचर में टेली कम्युनिकेशन आ रही है। आपको एक पैकेज अमेरिका भेजना है, आप इधर जाएंगे, किसी मशीन के सामने उसको रखेंगे कि ये, उसमें एड्रेस डालेंगे, टिक, जो ही आप टिक करेंगे ना, इधर का आपका वो पैकेज खत्म हो जाएगा, जल जाएगा या क्या होगा, और जिधर का एड्रेस है उधर वो हाजिर होगा। अब आपको तो बड़ी हैरत होगी, तो इससे ज्यादा हैरत आपको उस वक्त नहीं होती जब वो फोन पे बात करते हुए साथ तस्वीर देख रहे होते हैं। हम छोटे थे तो अक्सर ये बात सुनते थे कि एक वक्त आएगा लोग फोन सुनेंगे और साथ तस्वीर आएगी। तो ये क्या बेवकूफी है? आज सुनाइए, आपके इस हॉल में जो सबसे छोटा बच्चा ना, उसको बुलाएं तो सबसे पहले पता क्या करेगा? यूं करेगा, फिर वो इसमें से पता क्या करेगा? वो ये रेड बटन दबाएगा, फिर वो इसमें से चंद सेकंड में देखे अजान खोल ले, ये देखे हराम, पर्पसली तो नहीं खोला, शायद ये भी हमारी बातें सुन रहा है। अगली दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आपको मैं सुनाऊं तो आप तो भाग देंगे। आप सबको यकीन हो जाना हमारे घरों में जिन्न है, बिलीव मी। मैं कह सकती हूँ कि इसने ये कोई हमारी बातें सुनी है अभी, और मैंने जस्ट ऐसे ही क्लिक किया तो वो अजान का क्लिप चल गया। मुझे नहीं याद कि मैंने कब चलाया था, कभी होता है ना पुराना ही चल रहा है। आपकी सोच से ज्यादा दुनिया में इस वक्त टेक्नोलॉजी है, और ये सारी तैयारियां हैं उस कयामत के आखिरी दौर की जिसका वक्त बिल्कुल करीब है। चलिए आगे देखें, हर तरफ अमन और अमान होगा। ये कब होगा? गुजर गया, बेहतरीन दौर गुजर गया इस्लाम का, खुल्ला खुल्फा राशिदीन का दौर, दौरे अब्बासी, बाद में फिर अगली अलामत भी लिख लें, फितनों का जहूर होगा, फिर फितने मशरिक से जाहिर होंगे, कत्ले आम होगा। अगर आप इन नौ पे गौर करें ना, तो ये सब हो चुका। फिर जंगे जमल होगी, जंगे सफ़ैन, फिर ख्वारिज नाम का एक फिरका, खरजाइस बोलते हैं जिनको, ये रूनुमा हो गए, ये दीन से निकल गए थे, बहुत सब इन्होंने किया। इस तरह 13वीं निशानी क्या थी कि झूठे नबियों और दज्जालों का जहूर होगा, ये भी गुजर गए। और अगला तो आज का है, भी दिख रहा है, माल और दौलत की फरावानी होगी। ये आज वाला माल दौलत नहीं है, ये भी गुजर चुका है। क्योंकि एक अगली अलामत क्या है, बैतुल मकदस की फतह होगी। कौन सी वाली? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर की। हिस्ट्री पढ़ी आप में से किसी ने? इतनी बेगानगी। सीरत पढ़ी? यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं। अबू बकर सिद्दीक का दौर पढ़ा? उमर फारूक के दौर के वाकयात पता है? उस्मान गनी, हजरत अली। बस इससे आगे हम नहीं जाते। पढ़िए प्लीज पढ़िए। जो कौम अपनी तारीख से नहीं सीखती ना, फिर उसको दुश्मन सिखाते हैं सबक। बहरहाल ये सारी जंगें होगी, बैतुल मकदस की फतह अपनी जगह थी। पहले हजरत उमर के दौर में हुआ, फिर मुसलमानों की कुछ नासमझियों की वजह से छिन गया, फिर सलाहुद्दीन अयूबी। अब कैसे बैतुल मकदस फतह होगा? आपके हमारी नस्लों में से कोई उम्र पैदा होगा जिसको माएं दूध पिलाते वक्त भी लोरियां देंगी तो सहाबा और मुजाहिदीन की देंगी। और अल्लाह ने ये भी मौजा कर देना, अभी मुल्क शाम फतह हुआ, कितने सालों के बाद वहां इस्लाम का गलबा आया है, ये भी कयामत की निशानी है। लेकिन आप तरतीब के साथ लिखते जाइए, ताउन की वबा आएगी। ताउन एक पेट की बीमारी है, बहुत वर्ल्ड वाइड ये एक बीमारी फैल चुकी। फिर अर्ज़े हिजाज से आग रोशन होगी, तुर्कों से जंग होगी। और अगली चीज़ आपसे मेरे मुतल्लिक है, अमानत मफकूत और खयानत भरपूर होगी। आज क्या हाल है? आज अफसोस के साथ कहूंगी, हम मुसलमानों पे ये फिट होती है, लोग अमानतों की हिफाजत नहीं करते, खयानते हैं। सैंपल कुछ दिखाते हैं और जब माल बन के जाता है तो कुछ और होता है। कोई नया प्रोडक्ट आता है, शुरू में कुछ और होता है, 2 4 महीने साल में जब चल जाता है क्वालिटी डाउन हो जाती है। आप हैरान होंगे, किसी ने वाक्य सुनाया था चाइना का। चाइना में वैसे भी मुसलमान बहुत हैं और चूंकि पूरी दुनिया से उनका बिजनेस है, तो उनके पास जब कोई मुस्लिम क्लाइंट आता है ना, तो वो उनके लिए अलग से खाना बनवाते हैं, बहुत एहतियात से, हलाल मीट हो। लेकिन उन्होंने एक सवाल किया कि ये मुसलमान जो पिग नहीं खाते, फलानी खाना फलानी खाना, इसमें कितने एक्यूरेट हैं? लेकिन जब उस लंच और डिनर के बाद हमारे साथ बैठ के निगोसिएशंस करते हैं माल बनवाने की, तो उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नहीं, कुछ नहीं होता, 2 नंबर माल बना दो। उन्होंने कहा कि कौम जो खाने पीने में इतनी मुख्तात है, क्या वो अमानतों में मुख्तात है? कैसे इज्जत करें लोग हमारी? अल्लाह हमें हिदायत दे दे।